बोलो बोलो सब लोग बोलो हे गिरिधारी श्याम बनवारी हे गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी सब लोग बोलो जो पीछे बैठे हैं सब लोग बोलो खड़े हैं बैठे हैं सब लोग बोलो नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो बोलो हे गोविंदा हे हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला हे बंसीधारी नंद लाला हे मुरली मनोहर नंद लाला हे मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे गोपाल हे गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मनोहर नंद लाला हे मुरली मनोहर नंद लाला हे हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव
हरे कृष्णा। आप सबके पास में जो आरती श्लोक प्रार्थनाएं लिखी हैं उसके अंदर तीसरा पेज जो है इसमें 12 नंबर लिखा है श्री नरसिंह प्रणाम। सबको सबके पास में है तो हम सब लोग अभी मारूर इस गांव में आए हैं जहां पर श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की विग्रहों की पूजा होती है। इसलिए हम नरसिंह भगवान के आनंद के लिए यहां पर उनका प्रणाम करेंगे। जो हाथ से लिखा हुआ है वो पहले गाएंगे। मैं आपको पहले कह के दिखाऊंगा फिर आप उसके बाद में बोलना। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा प्रह्लादेश जय पद्मा प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम् उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम् नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम् उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम् नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्
ये एक आई बैंक सुभाष है संघ में, संस्कृत संघ का
मेरे साथ में यहाँ पर श्री भंडारकर जी बैठे हैं जो इस मंदिर का कार्यभार संभालते हैं। तो उनका पुत्र जो है वो उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स डिग्री किया है, तो संस्कृत में कुछ स्वस्ति वचन आपको सुनाएंगे।
उदयरविसहस्रद्योतितं रुक्षवीक्षं प्रलयजलधिनादं कल्पकृद्वन्निवक्त्रं सुरपतिरिपुवक्षश्छेदरक्तोक्षिताङ्गं प्रणतपयहरन्तं नारसिंहं नमामि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। अयि भो मान्याः, भवन्तः सर्वेपि मुम्बैनगरतः अत्र आगतवन्तः। एतत्स्थलं श्रीलक्ष्मीनरसिंहक्षेत्रमिति प्रसिद्धं वर्तते। अस्य क्षेत्रस्य ऐतिहासिकम् अपि वर्तते। भवन्तः सर्वेपि अत्र आगतवन्तः। कुत्रचित् श्लोकमेकं वर्तते, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति। भवन्तः सर्वेपि अत्र आगत्य भगवतः श्रीलक्ष्मीनरसिंहस्य भगवतः अपि च भागवतोत्तमस्य श्रीकृष्णस्य कीर्तनरूपेण भवन्तः अत्र नवविधभक्त्याम् अन्यतमस्य अस्य भजनस्य सेवां कृतवन्तः। भवन्तः सर्वेपि धन्याः इति वयम् आशास्महे। अपि च अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः पुनः पुनरपि श्रीलक्ष्मीनरसिंहदेवस्थानसेवासमितिपरतः अस्माकं परतः युष्माकं परतश्च स्वागतम् अपि च धन्यवादं कृत्वा मदीयात् द्विवचनात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा। संक्षिप्त में इसका अनुवाद इस प्रकार से है, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक नरसिंह का मंदिर है और इस ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना चल रही है और इस ऐतिहासिक स्वागत में बम्बई से आए हुए सभी भक्तों का यहाँ पर स्वागत है। और ये भी कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी संख्या में पुनः पुनः यहाँ पर आते रहे, ये हमारी शुभकामना है। राइट। हरे कृष्णा। मैं संस्कृत पंडित नहीं हूँ, थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ। हरे कृष्णा। तो
हरिप्रसाद,
हरिप्रसाद जी केवल 22 साल के हैं और उन्होंने बचपन से ही संस्कृत विषय में बहुत ही रुचि दिखाई है और बहुत वैसे बुद्धिमान हैं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ सकते थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल और बहुत सारा, लेकिन बचपन से उन्हें भगवान के लिए बहुत प्रीति है और उन्होंने भगवान के लिए भजन करने में वाद्य बजाना और फिर बड़े होने के बाद में एसएससी के बाद में और कुछ न करते हुए केवल संस्कृत में उन्होंने कुशलता प्राप्त करने का प्रयास किया है। अभी आज उन्होंने यहाँ पर संस्कृत का वो कोर्स किया है जिसमें जो कोर्स करने से यहाँ के जो आचार्य हैं जो गुरुगण हैं वो उनसे संस्कृत सीखते हैं, ऐसा उन्होंने एक कोर्स किया हुआ है और बहुत संस्कृत आप इसलिए उन्होंने कुछ श्लोक नहीं सुनाए, आपसे संस्कृत में बात किया उन्होंने, ही एड्रेस्ड यू इन संस्कृत लैंग्वेज। सो ऐसे बहुत बिरला लोग होते हैं आजकल के ज़माने में, इस उम्र में लोग क्या करते हैं आप मालूम है ना, बच्चे लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके अपने विचार रहते हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, सब जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में इतने ही कच्ची उम्र में भगवान के प्रति प्रेम, संस्कृत के प्रति प्रेम, तो संस्कृत जो है केवल भाषा नहीं है, वो भगवान की लोक में जो भाषा बोलते हैं ना वो भाषा है, वो भाषा केवल पढ़ने से भी आदमी भगवान का भक्त बन जाता है, इतनी भाषा में शक्ति है। नाम क्या उसका? संस्कृत। जिस पर बहुत अच्छे संस्कार हो गए हैं वो भाषा को संस्कृत कहते हैं। तो वो भाषा जो है, जैसे हम भाषा वो सीखते हैं, अपने आप उस भाषा के सारे जो जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्याकरण हैं, वो सब भगवान से ही जुड़े हुए हैं। सारे क्रियापद, सारे वाक् प्रचार, इसका सबका रूट जो है वो भगवान स्वयं कृष्ण है। ये बड़ी खुशी की बात है। इस मंदिर का संक्षिप्त इतिहास ऐसा है कि हरिप्रसाद जी के पिताजी देवदास जी भंडारकर जो इनके पहले यहाँ पर बैठे थे, उनके पिताजी हैं, उनके कई पीढ़ियों के पहले भंडारकर परिवार में श्री नरसिंह भगवान की पूजा थी। लेकिन आप जानते हैं कलयुग में, जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, लोग माया में फंस जाते हैं। तो किसी प्रकार किस समय पे, मेरे 50-60 साल पहले वो सेवा समाप्त हो गई, फिर 1961 में फिर उनके पूर्वजों ने फिर उसको आरंभ किया, तभी छोटी सी नरसिंह भगवान की मूर्ति थी जो आज यहाँ पर नहीं है, फिर वो बंद हो गई किसी कारणवश, और फिर 1999 में इस जगह पर जहाँ पर बहुत सालों से नरसिंह भगवान का पूजा अर्चन चल रहा था, फिर उसका कार्य निर्माण शुरू किया गया। और आज जो आपको लक्ष्मी नरसिंह भगवान की मूर्ति यहाँ पर नज़र आ रही है, वो 2002 साल में यहाँ पर पुनर्स्थापित की गई, और 2002 साल के बाद में अभी 2012 में अप्रैल में
नहीं, अपना परिवार भी इधर आए थे,
हाँ
पूजा अर्चना करके गए हैं।
हाँ बिल्कुल सही बात,
2002 में।
हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने भी यहाँ पर आए हैं हम लोग यहाँ पर, तो भंडार के जिसे हमारा बहुत प्रेम है, हम उनके बहुत ऋणी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं उनसे,
भगवान
का उन्होंने हमको बहुत प्रेम दिया है और भगवान का सेवा भी दिया है, इसलिए इतने बड़े दूर दूर के जंगल में आपको हम लेके आए हैं, ताकि ऐसे ऐसे सत्वगुणी और सुंदर शांत वातावरण में आपको भगवान का अनुभव करना आसान रहेगा। तो शहर में बस और ट्रेन और उसके आवाज़ के बीच में थोड़ा कठिन होता है, रजोगुण के बीच में, इसलिए आपको जंगल के बीच में लेके आए। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको प्राकृतिक आनंद का अनुभव करने को मिले, साथ साथ भगवान से भी जुड़े रहे हम। तो इस प्रकार से 2002 में नरसिंह भगवान का विग्रह लक्ष्मी जी के साथ में पुनर्स्थापन किया गया, और 2012 में भी 10 साल पूरे होंगे, और फिर बड़ा उत्सव होगा अप्रैल महीने में। हाँ, जिसको समय है यहाँ पर अप्रैल 15 और 17 के बीच में, 14-15 को यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगा उस समय, आना चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी 200 आए हैं, तो अगले बार 1000 लोगों को लेके आना।
2000
हरे कृष्णा,
100,000
इस ये मंदिर का जो निर्माण है, ये हमने आँखों से देखा है, इसमें कुछ नहीं था पहले, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर था, ये पूरा उन्होंने बहुत ही प्रेम से बनाया है। जो भी बनाया यहाँ पर कोई ऐश्वर्य का प्रकट नहीं है, यहाँ पर जो भी है सब प्रेम से बनाया हुआ है। जो भी आपको नज़र आता है, जो भी आपको भी व्यवहार नज़र आएगा, जो भी प्रसाद आप लेंगे, वो सब में आपको प्रेम का अनुभव होगा। इसी भावना से हम आपको यहाँ पर लेके आए। तो संक्षेप में हम आपको नरसिंह भगवान के धाम में आए हैं, तो उनका लीला बताना चाहते हैं। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में नरसिंह लीला का वर्णन आता है, प्रहलाद चरित्र भी आता है। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, दोनों ने कड़ी तपस्या की थी, और हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान वराह रूप में आए। हाँ, वराह मतलब शुकर, शुकर यानी कि लोकल लैंग्वेज उसको पिग कहते हैं, तो उसमें और वराह में अंतर है। भगवान ने दिव्य रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को आकाश में युद्ध करके वध कर दिया उसका। फिर उसके बाद में हिरण्याक्ष के वध के उपरांत हिरण्यकशिपु जो उनके भाई हैं, उन्होंने राज्य कारोबार ले लिया और कड़ी तपस्या की 1000 साल तक, स्वर्गीय 1000 साल, एक पायल के एक अंगूठे में रहकर उन्होंने तपस्या किया, और इतना भयंकर तपस्या किया कि आज तक के इतिहास में ऐसी भयंकर तपस्या किसी ने भी नहीं किया है। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया है भक्तों के बीच में, लेकिन वो इतनी भयंकर नहीं थी। 6 महीने तक तपस्या किया उन्होंने ध्रुव महाराज ने। हिरण्यकश्यप ने 1000 साल तक एक पैर के एक अंगूठे में खड़े रहकर केवल श्वास लेते हुए, श्वास में बाद में बंद कर दिया, और इतना उनका शरीर का क्षय हो गया कि केवल अस्थि पंजर बच गया, सब मांस सब नष्ट हो गया, केवल उनके प्राण जो है वो अस्थियों में घूमते थे। और इतना कठोर तपस्या किया कि शरीर के ऊपर चीटियों के घर बने, मराठी में कहते ना मुंग्याचा वारुळ, ऐसे पूरा चीटियों का घर बन गया उनका शरीर, एक तरह से पूरा शरीर नष्ट हो गया उनका, आधे शरीर में पूरा चीटियों का घर बन गया, इतना भयंकर तपस्या किया। फिर ये भयंकर तपस्या देखते हुए प्रसन्न होकर नहीं, मजबूर होकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। हाँ, कभी कभी कैसा ना, राक्षस लोग जब तपस्या करते हैं उनको रोकने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी प्रकट हो जाते हैं, बस बस इसके आगे मत करो, क्योंकि इससे ऐसे भयंकर तमोगुणी तपस्या करने से विश्व का नाश होता है। जब तपस्या भगवान के लिए नहीं करते हैं तो वो विश्व के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमको तपस्या करनी है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वेच्छा से असुविधाओं को स्वीकार करना, ये तपस्या की व्याख्या है। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो क्या मांगते हैं उनसे, हमें अमर कर दो, फर्स्ट डिमांड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ और विष्णु के नाभि से मेरा जन्म हो गया है, लेकिन मेरा भी जन्म हुआ है और मेरा भी अंत हुआ, मैं भी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हूँ। ब्रह्मा जी के लिए बुढ़ापा बीमारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका शरीर बूढ़ा होता ही नहीं है, लेकिन उनके लिए भी जन्म और उनके अंतर्धान होने का समय निश्चित है। जब सृष्टि का निर्माण होता है ब्रह्मा जी का निर्माण होता है, जब सृष्टि का अंत होने का समय आता है ब्रह्मा जी का भी अंतर्धान होने का समय हो जाता है। तो कहते हैं मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तो हिरण्यकश्यप सोचते हैं कि वो बड़े बुद्धिमान हैं, ऐसा वो सोचते हैं, तो ऐसा वरदान मांगते हैं जिससे मृत्यु किस किस प्रकार से हो सकती है ये सबका लिस्ट बना देते हो। हाँ, मृत्यु आकाश में हो सकती है, मृत्यु जमीन में हो सकती है, मृत्यु जल में हो सकती है, मृत्यु दिन में और रात में हो सकती है, मृत्यु किसी शस्त्र से अस्त्र से हो सकती है, मृत्यु जानवर से हो सकती है, पक्षी से हो सकती है, कीटक से हो सकती है, मछली से हो सकती है, मतलब जीव से हो सकती है, शस्त्र से अस्त्र से, और कुछ बच गया क्या? हाँ सब, हाँ हाँ, घर के अंदर हो सकती है, घर के बाहर हो सकती है, हाँ और हाँ वो शस्त्र अस्त्र हो गया ना, दिन और रात में भी बोल दिया मैंने, दिन और रात में हो सकती है, 12 महीने का है ऐसा कुछ नहीं, मनुष्य का हो गया, पशु हो गया, हाँ मनुष्य का बच गया, मनुष्य से भी नहीं हो सकता है, इस सब वरदान मांग लिया कि इससे किसी से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराए, बोले तथास्तु। तो इनको लगा कि अभी हम अमर हो गए, अभी हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है मृत्यु का, किसी भी तरीके से मार नहीं सकते, इसलिए उनका गर्व और अहंकार बढ़ गया। तो सबसे पहले उन्होंने ये वरदान प्राप्त करते ऐसा नहीं किया कि चलो सबका सेवा करेंगे, अभी फिर बहुत बड़ी जिंदगी है, मृत्यु तो होने वाली नहीं है, सब भक्तों की सेवा करेंगे, सब भक्तों को आनंद देंगे, भगवान की पूजा करेंगे, सबको संतुष्टि करेंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले लगा देवताओं को अपनी जगह से भगा दिया उन्होंने, देवता लोग भाग गए सब, इतना बड़ा वरदान प्राप्त करने वाला आदमी को कैसे मार सकते हैं, कोई इंद्र का वज्र नहीं मार सकता है, कोई देवी का तलवार नहीं मार सकती है, कोई स्कंद की शक्ति नहीं मार सकती है, कार्तिकेय का कोई शस्त्र नहीं मार सकता है, तो क्या क्या करेंगे क्या, वो सब भाग गए, सबको नौकर बना दिया उसने। कोई देवता पानी भर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना परोस रहा है, कोई घोड़े में साफ सफाई कर रहा है, कोई सारथी बन रहा है, ऐसे पूरा एकदम अपना अपमानास्पद उनसे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसा भी निर्णय कर लिया कि अभी जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा। बोले कि अहम भगवान अहम भोगी, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही भोगता हूँ, और भगवान का नाम लेना बंद करना चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए, सब साधु लोगों को मेरा जप करना चाहिए, क्योंकि तो उसने सोच लिया कि मैं भगवान बन गया। तो हाहाकार मच गया, सब लोग देवता लोग परास्त त्रस्त होकर भगवान के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास ले गए। तो विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी तक मेरे भक्त का उसने अपमान नहीं किया, अपराध नहीं किया है, जब वो अपने भक्त मेरे भक्त जो प्रहलाद जी हैं उसका अपराध करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, वो भी बहुत विचित्र तरीके से हुआ, तपस्या में गए थे, तभी एक तोता आकर वहाँ पर कृष्णा 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 सब बोल रहा था। तपस्या उसकी भंग हो गई, वो कृष्ण भगवान के आवाज से वो त्रस्त हो गया। उसी विचार में आकर उसने पत्नी के साथ संबंध किया, अतः प्रहलाद जी का गर्भधारणा हो गया और फिर तपस्या में गई। तो जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ और बड़े हो गए, उनको गुरुकुल में डाला गया, तो जो भी सिखाया उनको राक्षसों ने, क्या सिखाया, शंड और अमर का, दो उनके राक्षस गुरु थे, टीचर्स। वो सिखाते थे कि मित्र और शत्रु में फर्क क्या है, क्षत्रियों को कैसा नेस्तनाबूत करना चाहिए, शत्रुओं को कैसे नष्ट करना चाहिए, अपनों को कैसे बढ़ाना चाहिए, मतलब स्वार्थ कैसे अच्छा तरह से रखना चाहिए, और लोगों को कष्ट कैसे देना चाहिए, शत्रुओं को नष्ट कैसे करना चाहिए, आप प्रभाव कैसे सीखना चाहिए, ये सब सिखाते हैं। तो गुरु को कहते हैं वो कि आप मुझे एक सब क्यों सिखा रहे हैं, अपना मित्र कौन है, शत्रु कौन है, इसमें भेदभाव क्या है, ये सब क्यों सिखा रहे हैं। फिर भी उनका ड्यूटी था वो सिखाना, राक्षस के गुरुकुल में ये सिखाते हैं। तो कुछ देर शिक्षा पाने के बाद में उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया कि गुरुजनों को बुला, इनको ले आओ, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या सिखा उन्होंने। तो कहता पुत्र को बड़े प्रेम से सूंघा, गोद में बिठाया, गले लगाया, उनके शीश को सूंघा और कहा बेटा आपने क्या सीखा गुरुकुल में। तो क्या कहते हो, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। वो कहते हैं कि आप सब कुछ भूल कर ये सब भोग को त्याग करते हुए वन में जाना चाहिए आपको। बोले अरे ये किसने सिखाया उसको, तो गुरुजन कहते हैं हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से सिखा। तो फिर कहते डोंट वरी, बच्चा है कुछ पता नहीं, हमारे शत्रुओं ने उनको आपको गुप्त रूप में सिखाया होगा, हम जाके उसको अच्छा सिखा के वापस लाएंगे। दोबारा लेके जाते हैं और फिर उनको बुलाते हैं, फिर इस बार माता उनको समझाती है बालक को कि देखो ऐसा कुछ बोलना नहीं, अच्छा सुंदर श्रृंगार करते हैं बालक का, और फिर अपने पिताजी के पास भेजते हैं। फिर पिताजी बालक को देख के बहुत वात्सल्य भर से प्रेम से उसको गोद में लेते हैं, चूमते हैं और कहते हैं बेटा बताओ क्या सीखा तुमने। तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। अरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो मेरे शत्रु का नाम ले रहे और उसका नाम सुनना चाहिए, उसके लिए उसका वचन दोहराना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, ऐसा बता रहे हो। तो फिर राक्षसों को गुरु को डांटते हैं, वो कांपने लगते हैं कि हमने नहीं सिखाया। तीसरी बार प्रयास करते हैं, उस बार भी वो वही जाके ऐसा ही बताते हैं पिताजी को। बड़ी लंबी कथा है वो, हम संक्षेप में कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद जी का धैर्य जो था वो इतना श्रेष्ठ था, इतना पहाड़ जैसा पिता ने देवताओं को ऐसे हाहाकार मचा दिया था, उसके सामने 5 साल का बालक जानता है कि इसके नाम से भी इसको चीड़े, फिर भी कितनी हिम्मत से, कितनी शांति से और कितनी भक्ति भाव से कह रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। कितनी हिम्मत है, सब राक्षसों की सभा के बीच में भयंकर खूंखार राक्षस बैठे हुए हैं, उनका राजा है हिरण्यकशिपु, सबका शिरोमणि राक्षसों का, वो पूछ रहा है और इतनी हिम्मत से कह रहे हैं कि पिताजी आप मूर्ख हो, आप अपने आप को भोगी समझते हो, लेकिन भगवान नारायण भोगी है, सबसे ईश्वरो हम सर्व भोगी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये भगवान का स्थिति है और आप समझते हैं कि आप भगवान हो, सब गलत है, आप मूर्ख हो, आप सबको ये सब त्याग करके वन में प्रवेश करना चाहिए, ऐसे पिताजी की उपदेश करने की हिम्मत है उसको, क्योंकि वह सत्य कह रहे हैं, अहंकार से नहीं कह रहे। फिर आखिर में राक्षस गुरु भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कहां से सीख रहा है, हम नहीं सिखा रहे उसको, फिर भी ये सब कुछ विष्णु के बारे में कहां से सीख रहा है। तो फिर वो आखिरी में आके बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, वी आर वेरी सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पता नहीं ये लड़का किस प्रकार का है, हमारी जाति में हमारे कुल में ऐसा लड़का पैदा ही नहीं हुआ है जो ऐसे ही बेकार की बकबक करता है, इसलिए हमको माफ कर दीजिए, अभी हम इसको रिहा करते हैं, हमको हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं इसके। तो फिर वो पिताजी इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते बार बार आकर मुझे तुम उपदेश कर रहे हो, शक्ति कहां से प्राप्त होती है तुमको। इसके पहले वो सबको आदेश देते हैं कि जाओ इसको मार डालो, क्योंकि ये शरीर पर निर्माण हुआ एक कैंसर जैसा रोग है, जब शरीर में कोई असाध्य रोग होता है तो शरीर के हिस्सों को काट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो समय के साथ में शरीर को भी जलाकर भस्म कर देता है, रोग से नष्ट कर देगा, इसलिए समय पर उसको शरीर से काट को फेंक देना चाहिए। इस तरह से मेरे कुल के शरीर पर लगा हुआ ये पुत्र के रूप में रोग है, इसको नष्ट कर दूं। जो शास्त्र हो, अस्त्र हो, जो तरीका हो, उससे मार दो उसको। ऐसे पिताजी आदेश दे रहे हैं, पिताजी अपने पुत्र को मारने का आदेश दे रहे हैं। तो राक्षस लोग लेके जाते, उसको शस्त्र से मारने का प्रयास करते हैं, उसको पहाड़ से फेंक देते हैं, उसको हाथी के पैर में देते हैं, हाँ, उसको होलिका अपनी बहन के साथ जलाने का प्रयास करते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो अग्नि में बैठेगी तो अग्नि जलेगा नहीं, किसी और को जला देगा। तो कहते डोंट वरी, मैं उसको लेके बैठूंगी, मुझे वरदान है, मैं नहीं जलूंगी, वो जल जाएगा। लेकिन वो बच जाता है और होलिका जल जाती है। तब वो आक्रोश करती है, ये ऐसे कैसे हुआ, मुझे वरदान तो प्राप्त हुआ था। तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि वरदान किसी को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ था, आपको वरदान दिया था खुद को बचाने के लिए। अगर आग लगती हो तो खुद को बचाने के लिए आपको वरदान दिया था, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप किसी को मारने के लिए, इसलिए वो वरदान जो है उल्टा होकर तुम खुद जल रही हो, इसलिए वो मर जाती है। सांप के, विषैले सांप के बीच में देते उसको, फिर भी वो सांप उसको काटते ही नहीं है। हाथी के पैर के नीचे देते हैं तो हाथी उसको पैर डालता ही नहीं है। पहाड़ से फेंकते हैं तो नीचे भगवान आकर उसको गद्दी की तरह, फूलों की तरह संभाल लेते हैं। समुद्र में फेंकते हैं तो वहां पर वो डूबता नहीं है। इस प्रकार से हर प्रकार के जो प्रयत्न करते हैं उससे वो प्रहलाद जी बच जाते हैं। फिर आखिर में दोबारा उसको लेके आते हैं उसके सामने। राक्षस कहते हैं कि हम इसको नहीं मार सकते हैं, पता नहीं क्या शक्ति है उसके अंदर, हमारा शस्त्र अस्त्र सिद्धि विद्धि कुछ भी यहां पर काम नहीं कर रही, अभी आप सोचो क्या करना है इसका। तो उसको पिताजी की ओर ढकेल लेते हैं। पिताजी ऐसे कांप रहे हैं, उसके होंठ चबाकर, आंखें लाल लाल होकर गुस्से से कांप रहे हैं। बताओ तुम में इसमें शक्ति कहां से आ रही है, तो मेरे अधिकार को, शक्ति को, ऐश्वर्य को ललकार रहे हो, मेरे सारे बल के साथ भी तुम्हारा वध नहीं हो रहा है, बताओ तुम्हें शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है। तो एकदम सिंपल आंसर देते हैं, हरे कृष्णा। तो उत्तर देते हैं कि जिससे, जिस जगह से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है उसी जगह से मुझे भी प्राप्त हो रही है। सिंपल। कौन है वो? वही है विष्णु, तो सब जगह समाये हुए हैं, उनसे आपको भी शक्ति मिल रही है और मुझे भी शक्ति मिल रही है। फिर दोबारा विष्णु 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 विष्णु, नाम मत लो मेरे सामने उसका। तो वो कहते हैं कि सारी शक्ति, सारा आसमंत जो है चराचर में समाये हुए हैं, हर जगह पर समाये हुए हूं, कहां पर वो नहीं है? वो आपके अंदर भी है, आपके हृदय के अंदर भी बैठे हुए हैं, मेरे हृदय के अंदर भी बैठे हैं, सब जीवों के अंदर, राक्षसों के अंदर, देवताओं के अंदर, हर चराचर में, हर कण के बीच में, हर कण में, सब जगह वो बसे हुए हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं, अच्छा सब जगह बसे हुए हैं, तो यहां वहां देखते हैं तो बहुत सुंदर रत्नों से भरा हुआ एक, बहुत सारे स्तंभ थे वहां पर, पिलर्स थे, एक को उंगली दिखाते हैं, इसमें भी है? बोले हाँ, जैसे सब जगह पर है तो इसमें भी है। अभी देखता हूं, अब मैं इस खंभे को चूर कर दूंगा और साथ साथ तुम्हारा भी वध कर दूंगा, देखता हूं तुम्हारा विष्णु तुम्हें कैसे बचाता है। ऐसे करके तलवार निकालता है अपनी। हाँ, वो हमारे घर में, बहुत साल पहले की बात है, 96-97 की बात है, मेरी बेटी उस समय कुछ 7 साल की थी, और हमारे डॉक्टर आदिकेश्वर को जानते हैं आप, डॉक्टर शेट्टी, हाँ, 6 feet 2 inches, हाँ, बिग मैन। मेरी बेटी 5 साल की थी और डॉक्टर शेट्टी बने थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने 1 फुट का मुकुट पहना था, तो 7 फुट के हो गए ना वो, और हमारी बेटी छोटी सी 5 साल की प्रहलाद का रोल कर रही थी। हाँ, तो वो हमारी माताजी जो है, मेरी माता स्वयं, वो नाटिका देखने के लिए फर्स्ट रो में बैठी थी। आप सोच सकते ना, इतना भयंकर ड्रामा हो रहा है, सनसनीखेज, और उसके अंदर वो 7 फुट के आदिकेश्वर प्रभु वो 4 फुट की तलवार ऐसे ऊपर उठाते हैं ऐसे मारने के लिए, तो मेरी माँ डर गई वहां पर फर्स्ट रो में, ये क्या कर रहा है ये। हाँ, तो नाटक था, सिंपल, 7 फीट, हिरण्यकश्यप भी कितना भयंकर होगा। हाँ, ये तो नाटिका में तो हम लोग ऐसे ही खेल खेल में नाटक करते। तो फिर भी प्रहलाद जी डरे नहीं, तलवार उठाया उन्हें मारने के लिए और एक हाथ से खंभे को प्रहार कर दिया, तो खंभा चकनाचूर हो गया, और दूसरे हाथ से तलवार उठाकर अपने बालक को मारे ही, इसके पहले ही बहुत भयंकर गर्जना होती है, इतनी बड़ी गर्जना कि वो चारों सातों लोगों को पार करते, ब्रह्मांड को पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए वैकुंठ तक पहुंच जाती है, इतनी बड़ी गर्जना। सारे देवता लोग जो है वो डर जाते हैं कि अभी प्रलय काल हो गया है, कुछ भयंकर होने वाला है अभी। उस गर्जना से कुछ क्षण के लिए हिरण्यकश्यप भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन अपने अहंकार के वजह से कि मुझे कौन मार सकता है, हाँ, मुझे तो वरदान प्राप्त हो गया, इसलिए फिर अपने आप को संभालता है। और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। उस नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यपु बड़े गौर से देखता है, अरे ये कौन सा जीव है, ब्रह्मा जी के 84 लक्ष योनि में ऐसी कोई निर्माण निर्मिति नहीं होती है कभी। हाँ, आधा सिंह का शरीर चेहरा और आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मानव का, 8 भुजाएं हैं उनकी, लंबी लंबे नाखून हैं, आंख तप्त कोयले की तरह जल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं सिंह की तरह जोर जोर से। फिर उनका युद्ध होता है, बड़ा सुंदर वर्णन किया उनका युद्ध, नरसिंह भगवान के रूप का भी वर्णन किया है। जैसे ही वो खंभे से बाहर आ गए, वैसे फौज में खड़े थे उग्र नरसिंह भगवान। आज तक विश्व में इतना क्रोध किसी ने प्रकट नहीं किया है। हाँ, क्यों प्रकट किया है उतना क्रोध? मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया। तो इस तरह से उनके कान एकदम सिंह के, जब कान सिंह को जब गुस्सा आता है और किसी लक्ष्य को मारने को जाता है, उसके कान एकदम कड़क हो जाते हैं। उनकी जो म्यान जो देखते ना, आयाल, क्या कहते हैं उसको, मेन, व्हाट इज इट कॉल्ड, मेन, हाँ, वैसी फैले हुई थी जिससे बादल भी बिखर रहे थे आकाश में। आंखें तप्त कोयले की तरह थी, उसके नाखून सीधे और तड़प रहे थे, उनकी जबान जो थी उनके मुंह के अंदर तलवार की तरह हिल रही थी, जिससे देख कर सब लोग डर रहे थे। सुंदर वर्णन उनका दिया है, उनके दिव्य स्वरूप का। फिर उनका युद्ध होता है, तो ऐसे कहा है कि दोपहर के समय नरसिंह भगवान खंभे से बाहर आए थे। वरदान क्या था? दिन में न वध होगा न शाम को होगा, इसलिए दोपहर से शाम तक उन्होंने, जैसे एक बिल्ली किसी खिलौने के साथ खेलती है, वैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप के साथ में खिलवाड़ किया। कभी हारना, कभी जीतना, कभी पकड़ में आना, कभी पकड़ से छूटना, उसको पकड़ना, फिर उसके पकड़ में आना, फिर छूट जाना, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने खेल खेले उनके साथ में। समय का इंतजार कर रहे थे वो, और जब संध्या का समय आया, ना दिन है ना रात है, संधिकाल का मतलब क्या है, जब दिन और रात मिल जाते हैं तो संधिकाल होता है, कुछ समय होता है उसमें, नाम दिन कह सकते ना रात कह सकते हैं। उस समय उन्होंने हिरण्यकश्यपु के ही दरबार में ये सब हो रहा है ना, उसका ही दरबार का खंभा तोड़कर आए वो, इसलिए कहा गया कि खंभा उनकी माता थी, हिरण्यकश्यपु की माता, सॉरी नरसिंह भगवान की माता कौन है, खंभा, जिससे वो प्रकट हो गए। ऐसे भी शास्त्र में लिखा है कि जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि वो इस खंभे में भी है, उस समय तुरंत भगवान खंभे में प्रकट हो गए थे और अपने भक्त प्रहलाद को बड़े प्रेम से देख रहे थे। सो जैसे ही भगवान के भक्त ने उंगली दिखाई कि हाँ इसमें भी है, भगवान को उस शब्द को सत्य करने के लिए वहां पर आना पड़ा। तत्क्षण भगवान वहां प्रकट हो गए, एक इशारे पर कि यहां पर भी है, तुरंत वहां पर रेडी हो गए, वो खंभा तोड़ने के लिए रेडी हो गए। इतना प्रेम है भगवान का, भक्त के ऊपर कोई भी आघात होता है तो भगवान सहन नहीं करते हैं, इसलिए हमको भक्त के अपराध से बचना चाहिए। हाँ, आप सब लोग भक्त हैं, 200 लोग यात्रा में घूम रहे हो, सकता है किसी का झगड़ा हो जाए, किसी का कुछ बात हो जाए यहाँ वहाँ, लेकिन हमको संभाल के रहना चाहिए। अगर आप में से सब लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तो आप एक दूसरे का अपराध नहीं कर सकते, एक दूसरे का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त का अपराध करता है, सारे पाप उसमें प्रवेश करते हैं, दुनिया भर के पाप उनके अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। आप गलतियां कर सकते हो लेकिन किसी भक्त को कभी अपराध नहीं कर सकते। तो फिर बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, संध्या के समय भगवान हिरण्यकश्यपु के घर के दहलीज पे गए। हाँ, मराठी में कहते हैं उम्बर, उम्बर रहने के बीच की जगह, ना घर है ना बाहर है, वहां पर जाकर जमीन पर नहीं बैठे, वो एक पैर बाया ऐसा रखा आधा मोड़ के, उसके ऊपर दूसरा पैर रखा, मतलब कुर्सी बना दी उन्होंने, उसके ऊपर हिरण्यकश्यपु को पकड़ा उन्होंने और रख दिया अपनी जंघा के ऊपर, और दो हाथ से, एक हाथ से सर, एक हाथ से दो पैर सर दबा के रखा, दूसरे हाथ से उसका पेट फाड़ दिया उन्होंने, और दूसरे हाथ से, दो हाथों से वो आते जो है उसकी फाड़ कर बाहर निकाल कर हार की तरह पहन दी गले में। कितना क्रोध रहेगा भगवान को, कितना क्रोध उनको आता है जब उनके भक्त पर अपराध होता है, तो कितना क्रोध उनको आता है, उसका प्रदर्शन किया उन्होंने एक हमको शिक्षा देने के लिए, डरो भगवान के भक्त का अपराध करने से। बी केयरफुल, बिवेयर ऑफ ऑफेंडिंग डिवोटीज, संभाल के भक्तों का अपराध करना, कितना भी दोष दिखाई देंगे अपराध मत करना, बात कर सकते हैं आप, उनके दिल को नहीं दुखाना, क्योंकि भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। जब भक्तों के दिल को हम दुखाते हैं तो माफ़ी नहीं है उसके लिए। इतना भयंकर क्रिया भगवान ने कभी नहीं किया है। हाँ, दो हाथ से पकड़ना, दो हाथ से फाड़ना, और दो हाथ से पूरा हाथ आते बाहर निकाल कर गले में पहनना, और दो हाथ में शंख और चक्र पहना पकड़ा है उन्होंने, मतलब जमीन पर भी नहीं, आकाश में भी नहीं। बीच हवा में, घर में भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, कोई अस्त्र भी नहीं, अपने नाखून के शरीर के हिस्से से उन्होंने इसको फाड़ डाला। और क्या पालन किया नियम का? यस, रात में भी नहीं या दिन में भी नहीं, वो भी हो गया संधि काल। सब नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का पूरा आदर करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, सरस्वती उनको पूछ रही है, अरे आपके भक्त को वरदान देके फिर भी वो मार रहे हैं। वो कहते हैं क्या करें, जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। एक कहना भूल गया मैं, ना आदमी ने मारा ना जानवर ने मारा, ना अस्त्र ना शस्त्र, आधा आदमी आधा मनुष्य, आधा मनुष्य और आधा पशु। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के सारे वरदानों का आदर रखते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला। जैसे रावण का वध हो रहा था राम भगवान के द्वारा, तो पार्वती जी भाग भाग के आई थी शिव जी के पास, अरे आपका भक्त है ये, आपने उसको वरदान दिए थे, देखो देखो मर रहा है। बोला मैं क्या करूं, मेरे भगवान है वो रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र मेरे भगवान है, मैं मेरे आराध्य भगवान है, अगर उनकी इच्छा है तो मेरा वरदान किस काम का है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, अगर इसको भगवान बचाना चाहते हैं इसको कोई नहीं मार सकता है, और अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं उसको भी कोई नहीं बचा सकता है। अगर भगवान को किसको बचाना है उसको कोई मार नहीं सकता है। प्रहलाद जी को इतना मारने का प्रयास किया उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, और हिरण्यकश्यप ने हर तरह से बचने का प्रयास किया वरदान मांगकर, लेकिन वो बच नहीं पाया, मर गया वो। जैसे ही उसको फाड़ कर भगवान ने आते पहन ली तो भगवान ने आगे जाकर उसके हार्ट को, जैसे कोई फल तोड़ता है ना झाड़ से फल तोड़ता है, ऐसा हार्ट को तोड़ दिया शरीर से और जमीन पर फेंक दिया, और फिर लात मारकर उस शरीर को उन्होंने अपनी जंगा से नीचे फेंक दिया। वो देखते ही हिरण्यकश्यप के भाई उन पर अटैक किए, फिर उनका भगवान ने वध किया, केवल सिंह हाथ के नाखून से ही किया। फिर सब राक्षस लोगों ने अटैक किया उनके पर, वो सबका भगवान ने वध किया, सब असेंबली खाली कर दिया उन्होंने, मैदान पूरा साफ कर दिया। फिर भी क्रोध से वो चिल्ला रहे थे, गर्जना कर रहे थे, सब समाप्त होने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब हो गया, सबको मार दिया, भाइयों को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, जितने भी आतंकवादी सबको मार दिया उन्होंने। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं, वो गर्जना कर रहे थे, और उनकी गर्जना को देखते हुए देवता लोग भी कांप रहे थे। ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, वायु, सब लोग कांप रहे हैं उनको देख के, रे ऐसे कभी देखा नहीं उनको हमने आज तक, अभी शांत कैसे किया जाए। तो लक्ष्मी जी को कहते हैं, आप तो उनकी पत्नी है, आपकी घरवाली है उनकी, आपकी सुनेंगे वो। वो कहते हैं इनको पहचानते नहीं हूं मैं, आई डोंट नो हु इज ही, ऐसे रूप में कभी हमने देखा नहीं उनको आज तक, इसलिए मैं उनको पहचानते नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनके सामने जाने की। अभी आखिरी उनका प्लान था कि पत्नी के सामने तो कम से कम पत्नी का बहाना आगे करके शांत कर सकते हैं, पत्नी ने भी बोल दिया हम नहीं कर सकते। तो इतने बड़े बड़े देवता जो है, ब्रह्मा शिव आदि देवता जो है, लक्ष्मी जी सब खड़े हैं वहां पर, सबके सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रहलाद जी के सामने आते हैं, 5 साल के बालक के सामने, अभी आप ही उनको ठंडा करो। एक माला लेकर प्रहलाद जी बड़े प्रेम से हंसते हुए, स्मित हास्य करते हुए अपने पिताजी के सामने, मतलब भगवान उनके परम पिताजी, उनको माला पहनाते हैं। और जैसे एक सिंह अपने बालक को, है ना, कैसे प्रेम करता है पता है ना आपको, चाट कर अपनी जिह्वा से बड़े प्रेम से चाट चाट कर, पूरे शरीर को चाट कर भगवान ने उसको गोद में बिठाया और बहुत प्रेम किया, और तब जाकर वो शांत हो गए। और भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किया है, बहुत कष्ट सहन किया है। तो प्रहलाद कहते हैं, भगवान मैंने कहाँ कष्ट सहन किया, मैंने केवल आपका नाम लिया, हर समय मैं केवल आपका नाम ले रहा था, और क्या हुआ मुझे पता ही नहीं है। बोले आपको जब फेंका गया तो कहते कि आपने मुझे झेल लिया, आपको जो सांप के बिल में डाल दिया तो आपने सांप के परमात्मा के रूप में अंदर सांप को आदेश दिया कि तो काटो ही मत, तो उन्होंने काटा ही नहीं मुझे। मुझे हाथी के पैर दिया गया तो हाथी ने मुझे पैर दिया ही नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि तो हाथी के हृदय में आप परमात्मा के रूप में बैठे थे, हाथी को आपने प्रेरणा ही नहीं दिया कि पांव डाल कुचल जाए। इस तरह से हर समय आपने मुझे बचाया, मैंने कुछ नहीं किया है, ना मुझे कष्ट हुआ है, ना मुझे पता है, मैं तो केवल आपके नाम में मशगूल था। इसलिए इसका मतलब क्या होता है, भगवान का नाम और स्मरण जो है एक परमानेंट वैक्सीन की तरह है, जो उसको लेता है उसे दुनिया का कोई कष्ट का प्रभाव नहीं होता है। इतना भयंकर कष्ट जो है आज तक किसी भक्त को भी नहीं हुआ है, ना हम उसकी उम्मीद कर सकते कि हमारे ऊपर आएगा तो हम सहन कैसे करेंगे उसको। इतना भयंकर कष्ट जो है, प्रहलाद जैसा कष्ट किसी भी जीव को नहीं हुआ है आज तक। और प्रहलाद ने कैसे उसको सामना किया, केवल भगवान का स्मरण करके, निरंतर काल तक वो भगवान का स्मरण करते रहे, इसलिए हिरण्यकशिपु के सबसे बड़े से बड़े श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अस्त्र और शस्त्र का और कोई योजना का परिणाम उस पर कुछ भी नहीं हुआ। इतने छोटे से बालक का, इतने बड़े खूंखार राक्षस जो है, और स्वयं हिरण्यकशिपु मिलकर एक बाल भी बाका नहीं कर सके। तुमको विश्वास होना चाहिए, जो भगवान का सहारा लेता है उसको कोई छू नहीं सकता है। हमको इस दुनिया में केवल एक ही काम करना है, उनके नाम के आधार पर, भगवान के नाम के आधार पर भगवान का आश्रय ग्रहण करना है बस। हमारे भी घर में, सॉरी मिरर में जब पहली बार हम आए थे तो हमने भक्ति विधान अस्पताल के लिए एक फ्लैट लिया था और उस फ्लैट के लिए डीलिंग चल रहा था। और एक बार डीलिंग करते करते हम लोग उस मालिक के पास गए थे वो फ्लैट खरीदने के लिए, तो डीलिंग हो गया और हम घर के बाहर आ गए। तो घर के बाहर जब आ गए थे तो उसके घर में पप्पी था, एक पप्पी छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, वो भी उसके साथ बाहर आ गया। और मेन रोड पर जब आया तो मेन रोड से चार बड़े बड़े कुत्ते जा रहे थे, वो उसके बालक के ऊपर देखकर घुर्राने लगे, हाँ भौंकने लगे। और ये बालक भी, कुत्ता जो था पिल्ला, भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। हाँ आप बोलेंगे इतना सा पिल्ला, इतने बड़े बड़े चार कुत्ते, लेकिन वो अपने मालिक के दो पैर के बीच में खड़ा होकर चिल्ला रहा था। हाँ क्या सीक्रेट है इसके अंदर? वो कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है वो, उसमें कोई शक्ति नहीं है उस चार कुत्तों का सामना करने की। लेकिन जो चार कुत्तों से भी कई गुना ज्यादा बलवान है उसका मालिक, उसके पैर के बीच में आश्रय लेकर वो बड़े क्या कहते हैं उस हिम्मत के साथ में भौंक रहा था, और उसके भौंकने को देखकर चार कुत्ते भाग गए। ये आश्रय की महिमा है। आप जब सबसे शक्तिमान व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं तो कोई भी शक्ति दुनिया में आपको स्पर्श नहीं कर सकती। अगर मुझे आपके घर में प्रवेश करना है और आपके दरवाजे पर बड़ा आलसीचन कुत्ता जर्मन शेफर्ड खड़ा है, आपके ऊपर भौंक रहा है, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे ना तो वो कुत्ते को लांग कर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। कितना भी जूझेंगे दो घंटा चार घंटा, लेकिन कुत्ते को परास्त करके आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? कुत्ते से संघर्ष करना छोड़ देना चाहिए, पीछे आना चाहिए, मोबाइल लेकर मालिक को फोन करना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर आपके घर में मुझे आना है, और कोई जानवर बीच में खड़ा है तो वो आएगा, टॉमी कीप क्वाइट सिट हियर। टॉमी तुरंत अपनी पूंछ अंदर लेके साइड में जाएगा, हो सकता है आपके पैर को आके चाटेगा और आपको, आप एकदम राजा की तरह अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जो कुत्ता जो है वो माया देवी जैसा है। हाँ और हम लोग जीव हैं, जीव हम लोग को भगवान से मिलना है, तो माया हमको त्रस्त कर रही है, परास्त कर रही है, कष्ट दे रही है। लेकिन हम जब माया से संघर्ष करना छोड़ के भगवान को पुकारेंगे, जो माया का मालिक है, मायापति है, जो घर के मालिक है, वो भगवान की तरह है, जब उनको पुकारेंगे तो माया उनके अंडर है, उनका आदेश सुनते ही माया हट जाएगी, आपको उनका मिलने का रास्ता जो है एकदम सिंपल हो जाएगा। इसलिए हमको भगवान का सहारा लेना सीखना चाहिए। वो कला सीखने के लिए ये मनुष्य जीवन दिया है। हाँ इस दुनिया के भोग लेने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसे वाला, शरीर सुंदर होना चाहिए, कला आनी चाहिए, बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, यश कीर्ति सब जगह फैलनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ये सबसे किसी का भला नहीं होने वाला है, ये सब टेम्पररी है। ये मनुष्य जीवन इसी जन्म में लिमिटेड समय के अंदर कैसे भगवान का सहारा लेना चाहिए ये सीखने के लिए दिया है। इसलिए हम लोग चार दिन की छुट्टी निकाल कर यहाँ पर जगह जगह घूम रहे हैं फुल टाइम, और कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, कोई क्लिनिक का आवर्स नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, कोई दवाखाना, सब बंद करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों? फुल टाइम इसी में मन रहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु विष्णु स्मरणम, हाँ इसी में अपना मन लगा रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सीखने के लिए कम से कम साल में एक बार, दो बार, चार बार जब यात्रा करने का मौका आता है, यही सीखते हैं हम लोग कि हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का सही रूप से, हृदय से, तन से, मन से, आत्मा से सहारा कैसे लेना चाहिए, ये सीखने के लिए हम लोग आए। हम तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, सब अच्छा है, जब तक हम वो सहारा लेने में समर्थ नहीं होंगे तब सब सब बेकार है। जब जब करके, कीर्तन करके, गुरुजी की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके जब उनका आश्रय लेने में सफल हो जाएंगे तब हम पूर्णतः निर्भय हो जाएंगे, फिर दुनिया का कोई शक्ति कोई प्रभाव हमको प्रभावित नहीं करेगा। फिर उसके बाद में भगवान ने प्रहलाद को बोला, मांग लो प्रहलाद, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन कर लिया है। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कोई कष्ट सहन हमने किया ही नहीं, फिर भी कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, प्लीज आस्क, पूछो, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, आपके सामने भगवान खड़े हैं, बोल रहे मांगो जो दिल में आए मांगो। तो हम बड़ी लिस्ट बनाएंगे, सर हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, सर हमारे पास बंगला नहीं है, एक अमेरिका में घर होना चाहिए, एक इंडिया में होना चाहिए, एक साउथ इंडिया में होना चाहिए, हाँ मारूर गांव में अच्छा घर होना चाहिए और एक नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए, ऐसा बड़ा लिस्ट बनाएंगे। मेरी बीवी को जेवर मिल चाहिए, वो भी मिलने चाहिए, हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे होने चाहिए, उनका भी नाम सब जगह होना चाहिए, ब्रह्मांड तक हमका नाम होना चाहिए। लंबी लिस्ट बनाएंगे फिर भी वो पूरी नहीं होंगे, वो हाँ हाँ बोलते जाएंगे, फिर लास्ट लिस्ट बढ़ती जाएगी हमारी। लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, 5 साल के बालक क्या कह रहे हैं, भगवान मुझे आप वरदान का प्रलोभन मत दो, डोंट टेम्प्ट मी विद दिस बेनिडिक्शंस। मुझे डर लगता है इन वरदानों से, क्योंकि इन वरदानों को हाँ कह दूंगा और ले लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, वापस दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आता रहूंगा और फंसते रहूंगा। इसलिए हे भगवान मुझे वरदानों का प्रलोभन मत दो, मुझे केवल एक ही इच्छा है कि मेरे हाथ से वैष्णवों का अपराध ना हो। आई ओनली फियर वन थिंग, आई ओनली फियर ऑफेंडिंग डिवोटीज, मैं केवल भक्तों से अपराध करने से डरता हूं। मेरी एक ही तमन्ना है आपके भक्त और आप की सेवा मुझे हमेशा मिलती रहे और उनकी सेवा में मेरा जीवन जो है चलते रहे। ऐसा वरदान मांगने के लिए भी बहुत अच्छी बुद्धि और भक्ति होनी चाहिए। कौन ऐसे प्रलोभन टाल सकता है, स्वयं भगवान जो सब कुछ दे सकते हैं वो बोल रहे हैं मांगो जो दिल में आए मांगो, सिद्धि दे दूं, एक लोक दे दूं आपको, क्या चाहिए मांगो, मेरी अनंत लक्ष्मियों के साथ में आपकी सेवा करने का आदेश दे दूं, सब कुछ मां दे रहे हैं, बोलो क्या चाहिए आपको। ये क्यों बोल रहे हैं, वो प्रहलाद का गौरव हमारे सामने प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं। इतना सब जो हमको चाहिए वो प्रहलाद को देने को तैयार थे वो, और प्रहलाद जितना लिस्ट बोलते जा रहे हैं उसको सबको ना 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 बोलते जा रहे हैं। इस जगह पर लिस्ट प्रहलाद नहीं बना रहे हैं, लिस्ट भगवान बना रहे हैं, और प्रहलाद के बाद नो 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 करते जा रहे हैं, क्रॉस करते जा रहे हैं, भगवान एक के बाद वरदान देने को उसको पूछ रहे हैं। हमारी स्थिति उल्टी है, हम लिस्ट बना रहे हैं, भगवान को हाँ हाँ बोलना पड़ता है। तो ये प्रहलाद का महात्म्य है, प्रहलाद चरित्र इतना श्रेष्ठ चरित्र है। एक निर्भयता कैसे होनी चाहिए, भगवान का सहारा लेकर निर्भय कैसे बनना चाहिए, ये प्रहलाद ने सिखाया। भगवान ने भी क्या दिखाया कि मैं मेरे भक्त का अपराध सहन नहीं करता हूं, ये भगवान ने दिखाया। और हर स्थिति में भगवान हमारा सहारा दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, ये भी इससे साबित होता है। उसने केवल बताया, इसमें भी है, तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए, तुरंत तत्क्षण, ऐसे कोई आज तक लीला नहीं हुई है जो भक्त ने इशारा किया और भगवान वहां नौकर की तरह आगे खड़े हो गए और तुरंत भक्त का हित किया उन्होंने। ये चरित्र इतना महान चरित्र है प्रहलाद का कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको सैकड़ों बार सुना लगातार, वन आफ्टर अनदर। अब मैंने ये आपको एक कहानी बताई, अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो आप थोड़ा सुनेंगे, 3 बार सुनाऊंगा तो बोले अभी सुनाया था, 10 बार बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे और 11वीं बार सब लोग सो जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से प्रहलाद चरित्र को सैकड़ों बार सुना, वो भी नाचते हुए, और बताओ, फिर गदाधर पंडित ने फिर बताया भागवत से, क्योंकि ये चरित्र इतना प्रेरणादायी है। तो भगवान जब शांत हो गए, हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात प्रहलाद ने माला पहनाई, तब शांत हो गए, भगवान ने प्रेम किया, उनका क्रोध शांत हो गया, वरदान की बातें हो गई, प्रेम की बातें हो गई, फिर वो इस रूप में आए जो इस मंदिर में विराजमान है। लक्ष्मी नरसिंह का जो रूप है वो शांत स्वरूप है, और मुल्की में जाएंगे तो उग्र नरसिंह है, हाँ ऐसे भयंकर, आप देखेंगे शाम को हम दिखाएंगे उसको, इतने भयंकर मुद्रा में खड़े हो। मायापुर में जाएंगे हमारे आप मंदिर में, तो ऐसे कहा गया कि जैसे खंबे से बाहर आए थे ना, उसी क्षण का वो पिक्चर है उनका, रेडी टू अटैक द डीमन द शत्रु, ऐसे भयंकर स्वरूप है। हाँ इस बार कार्तिक में हम मायापुर जाएंगे, 6, 7, 8, 9 नवंबर को आप सबको लेके हम मायापुर जाएंगे, वहाँ पर नरसिंह भगवान, उग्र नरसिंह भगवान का पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी के लोक में भी ऐसी मूर्ति नहीं है, ऐसे वो मूर्ति बनाने वाले ने कहा था कि इस पोज में कहीं भी मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये भयंकर मूर्ति होती है, इसके रखने से आग लगेगी, झगड़ा होगा, क्या होगा पता नहीं है, ऐसे डरते थे बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। फिर बाद में उनको स्वप्न आया, उनके गुजरे हुए गुरु जी स्वप्न आए, उन्होंने बताया कि आप केवल इस्कॉन के लिए इसको बनाओ, फिर वो मूर्ति प्रकट हो गई, 1000 किलो पत्थर की बनी हुई मूर्ति। और जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो उसको डिलीवर नहीं किया उन्होंने जिसको देना था, मतलब इस्कॉन के मंदिर में, तो पूरी मूर्तिशाला जलकर खाक हो गई। मूर्ति को रेडी करके वो मूर्तिकार की शादी में गया था, किसी फंक्शन में गया था, तो न्यूज आई कि मूर्तिशाला जो है जलकर खाक हो गई है, तो समझ गए अभी ये टाइम उनका हो गया है भेजने का। तुरंत उनको फिर उन्होंने डिलीवर कर दिया उनको और फिर स्थापना किया। ऐसे नरसिंह भगवान है, उसको देखकर सब कांप रहे थे लेकिन प्रहलाद नहीं कांपे। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है वो भगवान के भयंकर क्रोध रूप में भी उसको देखकर डरते नहीं है। जैसे आप समझो कोई भयंकर मास्क पहन के खा करके बालक के सामने आएंगे, आपका बालक जो है तालियां पीटेगा, पापा पता है आपने वो मास्क लगाया है ना, क्योंकि पापा और बेटे के अंदर प्रेम है, उस प्रेम से वो पापा को डरता नहीं है वो, क्योंकि जानते हैं कि पापा तो रोल कर रहे हैं, हाँ खेल खेल रहे हैं। बाकी लोग डर जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं इस बात का। तो प्रहलाद के अलावा सब लोग डर रहे थे, लक्ष्मी जी भी कांप रही थी, हाँ सोचो आप, केवल प्रहलाद नहीं डरे। तो निर्भयता कैसी है, ज्ञान के साथ में आती है। तो जानते हैं मेरे भगवान हैं, ये मुझे कोई क्या कहते हैं उसको, हिंसा या कोई जख्म नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे मेरा, ये मेरे प्रेम के कारण आए हैं, मेरे लिए भयंकर रूप धारण करके आए हैं, राक्षसों के हृदय में हाहाकार मचाने के लिए। इसलिए वो शांत और प्रेम से खड़े थे, सब लोग कांप रहे हैं, प्रहलाद जी प्रेम से खड़े हैं। तो भक्ति जो है वो सबसे निर्भय होने का एक सबसे बड़ा मार्ग है। तो अभी आरती का समय हो गया है, बोलो नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की जय, जय श्री राधे। तो सब लोग अभी आरती में जाएंगे और भगवान नरसिंह भगवान की आरती का लाभ लेंगे।